हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मिसेस खुराना ने तारा परी को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया था और उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगी थी, और उसने अपना हाथ तारा के हाथ पर रखते हुए बोली थी, बेटी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। सच में सच कहूँ तो तुम्हारी जितने खूबसूरत लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा, तुम हो कहाँ से और कहाँ की रहने वाली हो? भई हमें भी बताओ ताकि हम भी अपने बेटों के लिए वहीं से दुल्हन चुनकर ले आएं। जो तुम्हारी जितनी खूबसूरत ना सही, कम से कम तुम्हारे आसपास के ही हो। जैसे ही तारा से मिसेस खुराना ने ये सवाल किया, तारा उन्हें हैरानी से देखने लगी थी। लेकिन जैसे ही तारा ने मिसेस खुराना का हाथ अपने हाथ पर रखा हुआ देखा, तो उसके अंदर के मन की बातें एक एक करके जानने लगी थीं। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि ये मिसेस खुराना आखिर में चाहती क्या है। तब तारा हल्के से स्माइल पास करते हुए मिसेस खुराना से बोली थी, वो आंटी, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, और करिश्मा मॉम की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया और मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। अगर आप भी अनाथ आश्रम में से बहू लाना चाहती हैं तो मैं आपको पता बता देती हूँ। आप प्लीज़ जाइए और वहाँ से किसी भी लड़की को चुनकर बहू बना लीजिए। जैसे ही तारा ने ये सब कहा, मिसेस खुराना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि तारा किसी अनाथ आश्रम की लड़की थी। तारा ने झूठ बोला था। करिश्मा जी भी तारा के झूठ पर हैरानी से देखने लगी थी। लेकिन जैसे उसने तारा की ओर देखा, तारा में करिश्मा जी को आंखों ही आंखों में सारी बातें समझा दी थी। जब तक करिश्मा जी भी मुस्कुराने लगी थी और हल्का सा मुस्कुराते हुए मिसेस खुराना की ओर मुंह करते हुए बोली थी, हाँ हाँ मिसेस खुराना, मैं अभी आपको उस अनाथ आश्रम का एड्रेस दे देती हूँ। आप प्लीज़ जाइए और वहाँ से अपने बेटे के लिए बहू ले आइए। हो सकता है आपको तारा बेटी जितनी खूबसूरत बहू मिल जाए, या हो सकता है तारा से भी ज़्यादा खूबसूरत बहू मिल जाए। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, मिसेस खुराना आग बबूला हो उठी थी और उसने एक झटके से तारा परी का हाथ झटक दिया था और बोली थी, क्या आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसे ही बिना खानदान देखे किसी भी अनाथ लड़की को अपनी बहू बना लूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तारा परी मिसेस खुराना के इरादे अच्छी तरह से जान गई थी, और साथ ही साथ वो ये भी समझ गई थी कि उसे दौलत, लालच और नाम शोहरत का कितना ज्यादा लालच है। तभी तारा परी ने उसे जानबूझ अनाथ आश्रम के बारे में कहा था। तब मिसेस खुराना करिश्मा जी से बोली थी, अरे हाँ हाँ करिश्मा, मैं तो तुझे बातें में बताना ही भूल गई। मेरी तो आज एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है पार्लर में, ठीक 3 बजे के, और 3 बजने ही वाली है। मैं निकलती हूँ, मैं तुझे फिर कभी मिलती हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। और मिसेस खुराना के साथ 2-3 औरतें जो थीं, वो भी किसी से किसी बहाने से जल्दी से वहाँ से निकल चुकी थीं। उन लोगों को इतनी हाबड़ताबड़ में जाते देखकर करिश्मा और तारा पीठ दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी थी। वहीं मिसेस खुराना अमन के बंगले से निकलते हुई सोचने लगी थी, जो अभी तारा परी को देखकर कुछ देर पहले उसके मन में तारा परी को अपने बहू बनाने का ख्याल पैदा हो रहे थे, वो एकदम से सारे के सारे झटक दिए थे। और सोचने लगी थी कि मैं थोड़ी सी कम सुंदर बहू ले आऊंगी, लेकिन लेकर खानदानी और पैसों वाली लेकर आऊंगी। मैं कोई ऐसी राहगीरी फटीचर बहू नहीं लेकर आऊंगी। श्रीमती खुराना उल्टा सीधा मुंह बनाती हुई जल्दी ही अमन के बंगले से बाहर निकल गई थी, और मिसेस खुराना के साथ 2-3 औरतें जो थीं, वो भी किसी से किसी बहाने से जल्दी से वहां से निकल चुकी थी। उन लोगों को इतनी हाबड़ताबड़ में जाते देखकर करिश्मा और तारा पीठ दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी थी। वहीं मिसेस खुराना अमन के बंगले से निकलते हुई सोचने लगी थी, जो अभी तारा परी को देखकर कुछ देर पहले उसके मन में तारा परी को अपने बहू बनाने का ख्याल पैदा हो रहे थे, वो एकदम से सारे के सारे झटक दिए थे। और सोचने लगी थी कि मैं थोड़ी सी कम सुंदर बहू ले आऊंगी, लेकिन लेकर खानदानी और पैसों वाली लेकर आऊंगी। मैं कोई ऐसी राहगीरी फटीचर बहू नहीं लेकर आऊंगी। श्रीमती खुराना उल्टा सीधा मुंह बनाती हुई जल्दी ही अमन के बंगले से बाहर निकल गई थी। करिश्मा जी ने तारा से कहा था, वाह रे वाह बेटी, बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने उसे, हैं? मुझे तुम पर गर्व है। अच्छा बताओ कहाँ गई थी? तुम? जैसे ही करिश्मा जी ने तारा से पूछा, तारा बोली थी, कहीं नहीं मॉम, बस मैं ऐसे शहर की ठंडी हवा में घूमने गई थी। मेरा थोड़ा सा दिल घबरा रहा था तो थोड़ी देर घूम कर मैं आ गई। तारा परी ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया था, क्योंकि वो करिश्मा जी को अभी कुछ भी बात कर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और उसने खुद ही अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने का फैसला कर लिया था। तभी करिश्मा जी ने अदृश्य जिन को मन ही मन वहां से जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई खतरा नहीं था जो अदृश्य जिन करिश्मा जी को दे पाता। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, तो करिश्मा जी ने उसे भी जाने के लिए कह दिया था। वेल, अभी तारा परी अपने कमरे में ही गई थी कि करिश्मा जी भी हॉल में से उठकर अपने कमरे में जाने लगी थी, लेकिन तभी विक्रांत रंधावा उसे दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। अभी चूंकि दोपहर के 3 ही बजने वाले थे और इस वक्त विक्रांत रंधावा घर आ गया था, तो उसे देखकर करिश्मा जी को हैरानी हुई थी, और वो जाते जाते वापस से रुक गई थी और विक्रांत की ओर देखते हुए बोली थी, अरे बेटा विक्रांत, तुम इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? क्या हुआ? और ऑफिस तो ठीक 7 बजे छूटता है ना? करिश्मा जी की बात सुनकर विक्रांत का दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त करिश्मा जी की जान ले ले, लेकिन फिर वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बोला था, वो आंटी, एक्चुअली आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं इसीलिए आज जल्दी घर आ गया, और वैसे भी अमन भी ऑफिस में नहीं है तो मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। तब करिश्मा जी उसे और कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी विक्रांत को कुछ भी कहने का उसका कुछ ज्यादा खास अधिकार नहीं है। तो तब करिश्मा जी ने विक्रांत से कहा था, बेटा तुम दवाई लेकर आए हो या नहीं, या मैं डॉक्टर को फोन करूं? तब विक्रांत ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था, मैं ठीक हूँ, मैं मेडिसिन ले आया हूँ, मैं बस कमरे में जाकर आराम करूँगा। ऐसा कहकर विक्रांत अपने कमरे की ओर जाने लगा था। करिश्मा जी उसे जब तक देखती रही थी, जब तक विक्रांत अपने कमरे के अंदर तक नहीं चला गया था। करिश्मा जी फिर कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई थी। न जाने करिश्मा जी को क्या हो गया था, विक्रांत पर उन्हें शक होने लगा था, क्योंकि विक्रांत जिस तरह से तारा की ओर देखा करता था, ये नजरें कुछ अलग ही तरह का उसे एहसास करवाती थीं। लेकिन कहीं न कहीं करिश्मा जी बात को इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि ऑलरेडी 10-12 दिन ही बचे थे विक्रांत के वापस जाने के, तो करिश्मा की अच्छी तरह से जानती थी अगर विक्रांत 10-12 दिन बाद तो चला ही जाएगा, उसके बाद जो वो इस तरह का शक विक्रांत के ऊपर कर रही है तो आई एम श्योर वो खत्म हो जाएगा। वहीं तारा परी जैसे ही अपने कमरे में गई, वो इधर उधर हैरानी से देखने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पूरा दिन के लिए अनुष्ठान कहाँ और कैसे करे, क्योंकि जब तक वो अनुष्ठान में नहीं बैठेगी तब तक वो सांप उसके करीब नहीं आएगा, और जब तक वो सांप उसके करीब नहीं आएगा वो उसका पीछा करके उसका पता नहीं लगा पाएगी। तारा परी को अच्छी तरह से उसे सांप की शक्ति का अंदाजा था, क्योंकि वो उसे अपनी आंखों से देख चुकी थी, वो उसका विशाल रूप भी देख चुकी थी, साथ ही साथ उसके गायब होने की शक्ति भी देख चुकी थी। इसीलिए तारा परी को जो भी करना था बड़ी ही होशियारी के साथ करना था। वैसे भी ये सांप केवल पहली सीढ़ी था, उसके साथ ऐसी सीढ़ियां पार करनी थी जिस पर ना जाने कितने सांप एक अलग अलग तरह के जानवर उसे मिलने वाले थे। लेकिन तारा परी ने सोच लिया था कि वो हर हाल में इन सब चुनौतियों को पार करके अमन के पिता को ढूंढकर निकालेगी, और वैसे भी उसके पास केवल 7 दिन थे, क्योंकि 7 दिनों के बाद अमन का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तारा ने सोच लिया था कि अगर एक एक दिन वो एक एक मंत्र को भी तोड़ेगी तो तब जाकर 7 दिनों के बाद अमन के पिताजी उसे मिल पाएंगे।
हालांकि तारा को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वो जीस खतरे में जाना चाहती है, वो खतरा उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। एक तो विक्रांत रंधावा नाम का खतरा उसके गर्दन पर मंडरा रहा था, साथ ही साथ अब वो खुद अपने आप से एक और खतरा मोड़ लेने जा रही थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भला बगीचे में जाकर किस तरह से स्नान कर सकता है, क्योंकि अगर वो वहां गया तो किसी को भी उस पर शक हो सकता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। वो आइडिया कुछ और नहीं बल्कि मल्लिका से मदद लेने का था, क्योंकि एक मल्लिका ही थी जो उसे वहां ले जाने में हेल्प कर सकती थी। साथ साथ उस डायन से पीछे छुड़ाने में भी उसकी सहायता कर सकती थी। अब काली शक्ति उनके मालिक अमित को रह रहकर उसे डायन का एक एक रूप, एक एक पल याद आ रहा था कि किस तरह से वो डायन उससे शादी करने के लिए उतावली थी। साथ ही साथ जब वो उसके माँ बाप के पास वाह लेकर गया था, तब भी उसने उनको देखकर किसी भी तरह का कोई प्यार मोहब्बत या कुछ भी नहीं दिखाया था, और वो इतनी आसानी से अमित के साथ आ गई थी। लेकिन औरत के जिस्म की हवस के चक्कर में अमित ने अपनी जान को आफत पा ली थी। अमित को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि ये आफत आगे चलकर उसके लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाली थी। अमित की आत्मा उसके जिस्म में तो आई गई थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे कमरे में जाने की, जिस कमरे में वो लड़की जिसका नाम गुड्डी था वो मौजूद थी। गुड्डी एक मासूम भोली भाली लड़की थी। उसके अंदर एक डायन का वास है, उसे भी इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब जब वो डायन गुड्डी के जिस्म पर हावी होती थी, तब तब गुड्डी सब कुछ भूल जाया करती थी, और जो वो डायन उससे करवाना चाहती थी वो केवल वही किया करती थी। गुड्डी शुरू से ही भीख मांगा करती थी, और वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर सभी आने जाने वालों से किसी न किसी तरह की मदद की उम्मीद रखा करती थी। फिर एक दिन गुड्डी की माँ ने गुड्डी के बाल धो दिए थे। हालांकि गुड्डी के बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, इसीलिए गुड्डी की माँ उसके बालों को हमेशा फोल्ड करके बांध दिया करती थी, ताकि किसी भी अमीर आदमी की नज़र उसके बालों पर ना पड़े, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी बालों को देखकर ही कोई भी गुड्डी की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकता था। इसीलिए गुड्डी की माँ गुड्डी के लंबे खूबसूरत घने बालों को बहुत ही छोटे से करकर बांध दिया करती थी थे और कितनी सारी गंदी कत्तर उनमें लपेट दिया करती थी। लेकिन उस दिन जिस दिन गुड्डी भीख मांगने के लिए उस सड़क किनारे बैठी थी, उस दिन उसकी माँ गुड्डी के बालों में रिबन डालना भूल गई थी, जिसकी वजह से अचानक से गुड्डी के सारे बाल खुल गए थे। और पूरी दोपहर का समय था और पीपल के पेड़ पर उस वक्त डायर अपने परिवार के साथ वहाँ मौजूद थी।